Iran Radio Podcast.
दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं उसे ईरान रेडियो ने तैयार किया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं ईरान की। कहते हैं कि ईरान दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में है। अगर हम ये कहें तो भी गलत नहीं होगा कि ईरान के प्रति दुनिया का आकर्षण कोई नई बात नहीं है। सदियों से ये सिलसिला चला आ रहा है कि दुनिया इस देश की ओर आकर्षित रही है जो अन्य देशों से बिल्कुल ही अलग है। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि कौन सा देश दुनिया के अन्य देशों से बिल्कुल ही अलग है और क्यों? इसका जवाब मैं आपको एक मिसाल के जरिए देना चाहता हूँ। मैं हूँ अख्तर रिज़वी और ये कार्यक्रम है अमंग द ईरानियंस। पुरानी कहानियां सुनने का तो आपको इत्तेफाक जरूर हुआ होगा। ऐसी ही एक कहानी है कि कुछ लोगों को, जिन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था, एक बड़े से अंधेरे हॉल में ये विशाल काय जानवर मिल गया। उन्होंने हाथी को पहचानने के लिए उसे अपने हाथों से छुआ। जिसने हाथी का सूंड छुआ था उसने हाथी को पाइप या नाली जैसा बताया। एक दूसरे शख्स ने हाथी का कान छुआ था, उसने कहा हाथी एक पंखे की तरह है। एक दूसरे व्यक्ति ने हाथी के पैर को छुआ, उसके दिमाग में आया कि हाथी एक ठोस स्तंभ है या खंभा है। एक भाई ने उसकी पीठ छुई तो उन्होंने कहा कि हाथी तो एक नर्म बिस्तर की तरह है। दोस्तों, ये एक मिसाल थी जिसमें हर इंसान अपने अपने हिसाब से हाथी को बयान करता है, क्योंकि कभी उसने इस जानवर को पूरा नहीं देखा था। अब आते हैं अपनी असल बात पर। 300 साल ईसा पूर्व एक यूनानी दार्शनिक और इतिहासकार हेरोडोटस ने ईरान को सुंदर उपासना स्थलों और आश्चर्यजनक महलों की सरजमीन, कला और हाथ से बुने हुए कालीनों, सुंदर रोएदार बिल्लियों, सुंदर चित्रों और हरे भरे बगीचों की धरती बताते हुए इसकी तस्वीर कशी की। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अपनी बात के लिए एक और उदाहरण पेश करता हूँ। प्राचीन यूनानी दार्शनिक और गणितज्ञ पाइथागोरस ने अपने जीवन के 22 वर्ष यात्रा में बिताए और वो लगातार अनेक देशों का सफर करते रहे। वो ईरान उस समय पहुँचे जब पहले हखामनशी राजा साइरस महान का निधन हो चुका था। जब वो ईरान पहुंचे तो ईरान की सरजमीन देखकर उनको बहुत ताज्जुब हुआ और हैरानो परेशानी के आलम में उन्होंने ईरान की सरजमीन का जिक्र किया। इसकी वजह यह थी कि पाइथागोरस का कहना था कि ईरानियों ने साइरस की वसीयत को एक कपड़े पर सोने के पानी से लिखा था, जिसके धागे خود بھی سونے کے ہی بنے ہوئے تھے۔ سائرس کی وصیت بھی بہت عجیب و غریب تھی، اور اس وصیت نے پائتھاگورس کا دھیان اپنی اور کھینچ لیا۔ سائرس نے اپنے ہم وطن ساتھیوں سے وصیت کی تھی کہ چونکہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اسی لیے میرے ٹھنڈے شریر کو سونے اور تاروں سے مت سجانا، بلکہ اسے جلد ہی دفن کر دینا۔ اب آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی بات کو بیچ میں چھوڑ کر پائتھاگورس کی یاترا کا ایک حصہ کیوں سنایا۔ ابھی جلد بازی مت کیجیے، میں آپ کو ایک جگہ تک لے جانا چاہتا ہوں جہاں تک جانے کے لیے یہ سب باتیں سننا بہت ضروری ہیں۔ ان سب چیزوں کو آپ بھومکا کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ تھک نہ گئے ہوں تو آئیے ایک اور پرسدھ ویاپاری کی جیونی کے ایک حصے پر نظر ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ ایران کو کن شبدوں اور وشیشتاؤں سے یاد کرتے ہیں۔ وینس کے مہان ویاپاری مارکو پولو نے اپنے یاترا ورتانت میں ایران کو بڑے اور پرانے شہروں کے ساتھ یاد کیا ہے، یعنی اس مہان ویاپاری کی نظر میں ایران پرانے اور بڑے شہروں کا دیش ہے۔ بڑے بازار، ریشمی کپڑے، کچی اینٹوں کی عمارتیں، تیز ہوا کے جھونکے، پانی سے بھرے جل سیتو اور 800 سال پرانے پیڑ وغیرہ ایران کی سندرتا میں چار چاند لگاتے ہیں۔ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے میں ایک اور مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس دنیا میں کون ہے جس نے ابن بطوطہ کا نام نہ سنا ہوگا؟ اتہاس کی کتابوں میں ابن بطوطہ کا بہت زیادہ ذکر ہوا ہے۔ اتہاس کے مہان وشو یاتریوں میں سے ایک ابن بطوطہ منگولوں کے حملے کے بعد ایران میں داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ اصفہان کے بھوے اور ایتہاسک شہر کا ایک حصہ پوری طرح سے برباد ہو گیا ہے۔ اس تباہی اور بربادی کے بعد بھی انہوں نے اسے بڑا اور اچھا شہر قرار دیا۔ یہ تو جب انہوں نے ایران کے ایک شہر کو دیکھا تو ان کا یہ حال تھا، لیکن جب انہوں نے امام ششتری کے مدرسے میں رات بتائی تو انہوں نے وہاں کا سوادشت اور لذیذ کھانا بھی کھایا جو ان کو بہت بھایا۔ اس کھانے کو انہوں نے بے نظیر یا ادوتیہ بتایا تھا۔ ایران کی یاترا کرنے والے کئی ورتمان پریٹک اس دھرتی کو شدھ پراکرتک سوندر کی سرزمین اور کئی پودوں اور پرجاتیوں کا نواس استھل بتاتے ہیں، جبکہ یقینی طور پر تیل اور گیس کا ایک پرمکھ اتپادک بھی اس دیش کو قرار دیتے ہیں۔ لیکن کئی لوگوں کے لیے، وشیش کر پشچمی دیشوں میں، ایران ابھی بھی عجیب اور رہسیمئی دیش کی طرح جانا جاتا ہے، اور اس ادبھت سرزمین پر قدم رکھنے والے پرتیک پریٹک کے لیے یہ دیش ایک انوکھی اور الگ اوھارنا پیش کرتا ہے، بالکل اندھیرے میں ہاتھی کی کہانی کی طرح، کیونکہ بہت کم لوگ ایران کی ادبھت سرزمین کی ساری مہانتا، سندرتا اور آشچر کو دیکھنے اور چھونے میں سکشم ہیں، اور کبھی کبھی وہ ان سب چیزوں اور سندرتاؤں کا ورنن کرنے میں اسہائے اور اکشم نظر آتے ہیں۔ اب تو آپ کی سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ میں نے ہاتھی کی مثال کیوں دی تھی، اور اپنی مثال پر دلیل کے طور پر کچھ पर्यटकों की बातें भी आपको बताई थी। अब चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद समकालीन दौर में यानी 80 के दशक में ईरान की यात्रा करने वाले लोगों में एक ग्रीस की नागरिक सोफिया ए कैटलोकी थी। अब चलिए सोफिया के बारे में भी आपको कुछ बता दें, नहीं तो आप कहेंगे कि कहां से कहां बात लिए चले जा रहे हैं, बात समझ ही में नहीं आ रही है और बात को फैलाते चले जा रहे हैं। सोफिया ने, जिन्होंने एथेंस विश्वविद्यालय में अंग्रेजी भाषा और साहित्य का अध्ययन किया, और कार्डिफ विश्वविद्यालय इंग्लैंड से भाषा विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, उन्होंने ईरान की यात्रा की। सोफिया का ईरान आना ईरान इराक युद्ध की समाप्ति के 7 महीने बाद हुआ। ये जंग ईरान के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों पर इराक के हमले से ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता के ठीक 19 महीने बाद ही ईरान पर थोपी गई थी। ये जंग 8 साल तक चलती रही। सोफिया का ईरानियों के टच में आना और ईरान की यात्रा करने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है, इसको भी सुन लीजिए तब आपको और भी मजा आएगा। सोफिया लंदन स्थित एक ईरानी कंपनी में काम करती थी और इसी कंपनी के जरिए उन्हें ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता की 10वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। आपको ये भी बता दूं कि जब कोई इंसान पहली बार किसी नई जगह पर जाता है या नई जगह देखने के लिए निकलता है तो वो चाहता है कि अपनी यादों को कलम और किताब में कैद कर दे और अपनी यादों को किताब की शक्ल दे। यही काम सोफिया ने भी किया। उन्होंने अपनी ईरान यात्रा के नतीजों को अमंग द ईरानियंस नामक किताब में समेट दिया। इस किताब में उन्होंने ईरानी संस्कृति और रीति रिवाजों को बेहतरीन ढंग से पेश करने की कोशिश की है। इस पॉडकास्ट श्रृंखला में हमने सोफिया कोटलकी की जबान में ईरान का परिचय देने की कोशिश की है। इस पॉडकास्ट श्रृंखला का ये पहला एपिसोड है। हमारे साथ रहिए। जब मैंने पहली बार 1980 के दशक के आखिर में ईरान की यात्रा की तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी दूसरी दुनिया में कदम रख दिया हो। ये मेरा पहला तजुर्बा था और यह तजुर्बा बहुत ही सुंदर साबित हुआ। बेशक इस यात्रा से कई साल पहले ही मैं ईरानियों से मिली थी और एक के ईरानी से मैंने शादी भी की थी। मैंने इस देश को कभी करीब से नहीं देखा था। आज मैं जिस ईरान को इतने नज़दीक से देख रही हूँ इसके बारे में तसव्वुर करना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मेरे लिए ये तजर्बा बहुत अद्भुत था और बहुत ही अजीब। मेरी कहानी सुनिए तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। जब मैं होटल पहुँची तो होटल के दरवाजे के सामने ही मेरे पति का सारा परिवार मुझसे मिलने को उत्सुक था, क्योंकि मैं पहली बार शादी के बाद हुसैन के साथ तेहरान आई थी। लेकिन जब तक मैं अपने कमरे में शिफ्ट नहीं हो गई तब तक उन्होंने मेरा इंतज़ार किया और फिर टूर गाइड से मैंने अपने ईरानी रिश्तेदारों के घर पर रात बिताने की इजाज़त मांगी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक गुजर रहा था, लेकिन अब जो होने वाला है उसके लिए आप लोग दिल थाम कर बैठे। मेरे पति हुसैन के पिता यानी मेरे ससुर का घर तेहरान प्रांत के सबसे पुराने क्षेत्रों में से एक रह शहर में था। रह शहर का जिक्र कई प्रसिद्ध लोगों की यात्रा वृत्तांतों में हुआ है। शाह अब्दुल अजीम का मजार रह शहर में स्थित है, जो ईरान की ऐतिहासिक धार्मिक इमारतों में है। ये मजार वास्तव में शाह अब्दुल अजीम हसनी की कब्र है, जो एक महान शिया विद्वान और शिया मुसलमानों के दूसरे इमाम और हजरत अली अलैहिस्सलाम के बड़े पुत्र हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पौत्र थे। ईरान में दाखिल होने से पहले ही मेरी एक सहेली ने मुझे बता दिया था कि ये तीर्थ स्थल हमेशा से श्रद्धालुओं और जायरीन से भरा हुआ रहता है और ईरानी महिलाएं शाह अब्दुल अजीम हसनी पर विशेष आस्था रखती हैं और उनका खास सम्मान करते हुए उनके मजार में काली अबा पहनकर जाती हैं। रह शहर पहुंचते ही मैंने अपने सूटकेस से वो काली अबा निकाली जो मैं लंदन से अपनी सहेली से मांग कर लाई थी। ठीक बच्चों की तरह मुझे भी काली अबा पहनने का बहुत शौक था, लेकिन एकमात्र समस्या ये थी कि मैं शायद इसके लायक नहीं थी। बच्चों की तरह मैंने शौक में काली अबा पहन तो ली, लेकिन उसे संभालना और संभाल कर चलना बड़ा तीर मारने जैसा था, लेकिन मैं हार नहीं मानी। अबा पहनकर मैं निकल पड़ी और उसके बाद जो कुछ हुआ मैं उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरे एक हाथ में बैग था और दूसरा हाथ तोहफों और उपहारों से भरा हुआ था और मैं इस पोजीशन में अपनी अबा संभाल नहीं सकती थी। अबा पहनकर चलना बहुत मुश्किल काम है। जब मैं लिफ्ट से बाहर आ रही थी तो शायद मैं अपने ससुर और ननद को बहुत अनाड़ी लग रही थी। मेरे ससुर हाजी नासिर आहंगर का कद मेरे पति हुसैन से छोटा था, लेकिन वो मोटे थे। उनके चेहरे पर वही सुंदर और आकर्षक मुस्कान थी। मेरे पति की बहन यानी मेरी ननद मंसूरा मेरी हम उम्र थी। बादामी और कटीली आंखों और भूरी भौं वाली वो एक प्राथमिक विद्यालय की टीचर थी। जब मैं अपनी ससुराल पहुंची तो मुझे पता था कि घर में प्रवेश से पहले और दरवाजे पर ही मुझे अपने जूते उतारने होंगे। कुछ चीज़ों को मैंने पहले ही सीख रखा था। मैं बहुत होशियारी और समझदारी से उनके जैसा व्यवहार कर रही थी। मैंने किसी को असुविधा पहुंचाने के लिए कोई भी गलत काम नहीं किया। क्योंकि मेरे ससुराल में एक मेहमान आने वाला था और मुझे नहीं पता था कि ईरानी संस्कृति और रीति रिवाजों में किसी मेहमान या अजनबी के सामने मोजे न पहनना अच्छी बात नहीं है। मैंने अपने मोजे उतार दिए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे जल्द ही इसका एहसास हुआ और मेहमानों के आने से पहले ही मैंने अपने मोजे दोबारा पहन लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आने वाली मुसीबत के लिए मैं बिल्कुल ही तैयार नहीं थी। ईरानियों के घरों के बारे में एक दिलचस्प बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सैकड़ों साल पहले से ही ईरान के घरों में शौचालय हुआ करते थे। पुराने घरों में ये शौचालय आंगन में स्थित हुआ करते थे, जो घर का सबसे दूर दराज का इलाका होता था। घर में हर किसी को इस जगह पर जाने के लिए एक विशेष प्रकार की चप्पल का इस्तेमाल करना होता है, जो आम तौर पर बाथरूम के दरवाजे की दीवार से लगाकर धोकर और साफ सुथरी कर रखी जाती है। शौचालय के लिए विशेष इस चप्पल के अलावा परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास भी अपनी एक विशेष प्रकार की चप्पल होती है। باتھ روم سے باہر آنے کے بعد گھر کے لوگ آنگن سے دوری طے کرنے اور شوچالے سے گھر کے اندر آنے کے لیے اپنی چپلیں پہنتے ہیں اور گھر میں پرویش کرنے سے پہلے انہیں چپلوں کو اتارنا پڑتا ہے۔ بے شک مہمانوں کو پریوار کے سدسیوں کی چپلیں استعمال کرنے کے لیے گھر کے مالکوں کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی لیے آپ کو دوسرے کے گھروں میں اپنی چپلیں لانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج کل گھر پوری طرح سے بدل چکے ہیں، تو کیا ایرانیوں کے گھروں میں بھی کچھ تبدیلیاں آئی ہیں یا نہیں، تو چلیے دیکھتے ہیں۔ آج کل بننے والے گھروں میں تو زیادہ تر اپارٹمنٹ ہوتے ہیں اور ان میں آنگن نہیں ہوتے۔ ایرانی شوچالے گھر کے اندر بنائے جاتے ہیں اور شوچالے کے اندر وشیش پرکار کی چپلیں رکھی جاتی ہیں اور انہیں شوچالے سے باہر نہیں لایا جاتا۔ میں یہ بات بڑھا چڑھا کر نہیں بتا رہی ہوں، ویسے تو ایرانی ہمیشہ سے ہی صاف ستھرے ہوتے ہیں، چونکہ ایران کے لوگ گھر کے سب سے دور والے حصے میں شوچالے بناتے ہیں، اسی لیے آج بھی کچھ اپارٹمنٹ میں شوچالے گھر کے پرویش دوار کے پاس ہی بنائے جاتے ہیں، اور نشچت روپ سے شوچالے اکثر باتھ روم کے اندر باتھ ٹب اور شاور کے بغل میں استھت ہوتا ہے۔ یہ بھی جان لے کہ کسی بھی استھتی میں آپ کو گھر کے انیہ حصوں میں باتھ روم سے وشیش چپل نہیں پہننی ہے۔ ہم اپنی اس بات میں شریمتی کوٹلکی کے شبدوں کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران میں کم سے کم حکام رشی کال سے، یعنی لگ بھگ 550 ورش عیسیٰ پورو سے پہلے ہی شوچالے سویدھا موجود رہی ہے، جنہیں آبریزگاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پراچین ایران میں شوچالے ایک سیٹ یا پتھر کی اونچائی یا سیٹ کے سمان ہوتے تھے، اور اس سیٹ کے بیچ میں ایک جل نکاسی ویوستھا ہوتی تھی جو آج کے شوچالے کے سمان ہی ہوا کرتی تھی، جو شاریرک سواستھ کے لیے بہت ہی کم ہانیکارک ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم اتہاس پڑھتے ہیں اور اتہاس پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں منگولوں کے حملوں کا دور نظر آتا ہے، جو واسطوں میں ایرانیوں کے آدھنک شوچالیوں کے نرماتا ہیں۔ دوستو آئیے دیکھتے ہیں کہ سشری کوٹلکی نے کس طرح سے ایرانی سنسکرتی اور ریتی رواجوں کا بیورا پیش کیا ہے۔ شریمتی کوٹلکی کہتی ہیں کہ آپ کو ایران میں اپنے جوتے اتارنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، خاص کر جب آپ اپنے گھر میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ ایرانی لوگ اپنے گھروں کے باہر جوتے اتار دیتے ہیں، اور اس کا ایک کارن یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ سڑک کا پردوشن اور سڑک کی گندگیاں گھروں میں داخل ہوں۔ گھروں میں قالینوں کو صاف رکھنا چاہیے، کیونکہ گھر کے سدسیہ اسی قالین پر سوتے ہیں، کھاتے ہیں، اور سب سے مہتوپورن بات یہ ہے کہ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے ان کی یہ عادت پسند ہے، کیونکہ اس طرح گھر میں کم صفائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایران میں سب سے غریب لوگوں کے گھر بھی ہمیشہ صاف ستھرے رہتے ہیں۔ ادھکانش ایرانی گھروں میں ہر گھر میں کم سے کم ایک صوفہ ہوتا ہے۔ ایرانی گھروں میں پرائیویٹ سیکٹر یا نجی بھاگ کے علاوہ ایک خاص جگہ ہوتی ہے جسے ہال کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اپیکشاکرت بڑا کمرہ ہوتا ہے جو دوستوں، مہمانوں اور پاریوارک سدسیوں کے لیے بیٹھنے اور وہاں آپس میں بات چیت کے لیے وشیش ہوتا ہے۔ گھر کے اس حصے میں عام طور پر صوفہ لگا ہوتا ہے۔ ایران میں پہلے صوفہ رکھنا دھن کا پرتیک تھا، یعنی کیول امیر لوگوں کے پاس ہی صوفہ ہوا کرتا تھا، لیکن اب सभी ईरानी सोफे का उपयोग करते हैं। यदि ईरानी लोगों के अपने मेहमानों के साथ बहुत अच्छे और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं या वो बहुत फ्रैंक होते हैं तो उन्हें घर के भीतर ही बुला लेते हैं या उन्हें हॉल में बैठने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि उन्हें उन शाही और औपचारिक सोफे पर भोजन परोसना या उनकी आवभगत करना उबाऊ लगता है। ईरानियों में बड़ों और मेहमानों का सम्मान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ताकि छोटे और मेजबान उनके सामने सम्मान पूर्वक बैठ सकें और पैर न फैला पाएं। लेकिन जब वे प्रथम श्रेणी के परिवार के सदस्यों या उनके करीबी लोगों के साथ घर पर हों तो अपने से बड़े लोगों की उपस्थिति में भी सोफे पर लेटने या फर्श पर आराम से बैठने की इजाज़त होती है। लेकिन विवाह समारोह जैसी औपचारिक स्थितियों में या इन जैसे इवेंट के मौकों पर शिष्टाचार का तकाजा होता है कि आप अपने बैठने के तरीके पर ध्यान दें और सीधे से बैठें, और इससे पता चलता है कि दूसरों की उपस्थिति में विनम्रता उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि एक अंग्रेज का घर उसका शासनाधिकार का इलाका है तो एक ईरानी का घर महिला का शासन क्षेत्र होता है। जब घर की महिला बड़ी हो जाती है तो परिवार के सभी सदस्य घर की बड़ी महिला के दैनिक कार्यों में मदद करते हैं। परिवार के लड़के रोजाना ताजी रोटी, दही और सब्जियों जैसी खरीदारी करते हैं। लड़कियां घरेलू कामों में मदद करती हैं, जैसे कि मेज की सफाई करना, बर्तनों को धुलना, पोछना, सुखाना और उन्हें उनकी जगहों पर रखना, कालीन धोना, खिड़कियां और दीवारों को साफ करना जैसी भारी जिम्मेदारियां भी पुरुषों की ही होती हैं। मैंने आपको ईरानी घरों के आंगन के बारे में बताया था, लेकिन मुझे ये भी बताना चाहिए कि ईरानियों के यहाँ आंगन भी घर का ही एक हिस्सा माना जाता है। ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी भी होता है। ये जानना दिलचस्प है कि अतीत में ईरानी लोग आंगन में ही कालीन धोते थे, कार्यक्रमों और पार्टियों के लिए भोजन तैयार करते थे और यहाँ तक कि गर्मी के मौसम में आंगन में एक साथ बैठते थे या मच्छरदानी में आंगन में ही सोते थे, जो बहुत ही आनंददायक होता है। पुराने और पारंपरिक घरों में कमरे एथेंस के पुराने घरों की तरह आंगन के आसपास स्थित होते थे। इन घरों में आंगन के बीच में एक छोटा सा हौज होता है जो आंगन की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। अतीत में ईरानी हौज के पानी का उपयोग धोने के लिए किया करते थे। आज इमारतों में पाइपलाइन के साथ हौजों में पानी का महत्व कम हो गया है, लेकिन हौज अभी भी ईरानियों की आत्मा से जुड़े हुए हैं। वे तालाब को परिवार के हृदय की पवित्रता और शांति का प्रतीक मानते हैं। वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से जिन्होंने अपना पूरा जीवन सुंदर हौजों वाले बड़े घरों में बिताया, उनके लिए हौज के बिना एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने की कल्पना भी करना कठिन है। तो दोस्तों, पॉडकास्ट अमंग द ईरानियन से यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आता है तो दूसरों को शेयर कीजिए।